أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم من عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم مجمعين سورة الحجر آيات 40-44 یہ مضمون کچھ عرصے سے شروع ہے کہ جب تک انسان ایسی حالت میں جان نہ دے کہ وہ عباد اللہ میں شامل ہو چکا ہو یا عباد الرحمن میں شامل ہو چکا ہو اس وقت تک اس کی آئندہ زندگی کے اچھے ہونے کے متعلق کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اس کا برا ہونا بھی لازم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے جیسے چاہے بخش دے مگر وہ شخص جو مرتے وقت خدا کا بندہ نہ بن سکا ہو اس کے متعلق یہ یقیناً کہہ دینا کہ وہ آئندہ زندگی میں نیک اجر پائے گا یا ضرور بخشایا جائے گا یہ محض وہم و گمان ہے اور عمومی قاعدے کے خلاف ہے. سوال یہ ہے کہ کتنے ہیں جو اس دنیا میں جیتے جی خدا کے بندے بن چکے ہوتے ہیں؟ جب ہم خدا کے بندوں کی صفات پر غور کرتے ہیں جیسا کہ عباد الرحمن کی صفات میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھی تھی تو ہر شخص اگر اپنے آپ کو کریت کر دیکھے اور تقویٰ رکھتا ہو کچھ بھی انصاف سے کام لے تو اسے ہر دفعہ اپنے ضمیر کو کریدنے پر ایسے نشان دکھائی دیں گے جو خدا کے بندے ہونے کے خلاف گواہی دیتے ہیں. اگر کلیت نہیں تو کہیں نہ کہیں ہر انسان کبھی شیطان کا بندہ بن چکا ہوتا ہے اور اکثر آدمی اکثر صورتوں میں خدا کے سوا شیطان ہی کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کر دیتے ہیں. کیونکہ جب نفس کی عبادت کرتے ہیں وہ شیطان کی عبادت ہے, جب خدا کے احکامات کے بالکل برعکس ایک اپنا طریق ڈھالتے ہیں تو وہ صراط مستقیم تو بہرحال نہیں, اور اللہ کے بندوں کے متعلق یہ شرط ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور جب صراط سے بھٹکے تو کسی آواز سے بھٹکتے ہیں, کسی اور منظر نے توجہ پھیری ہے اپنی طرف, سب جا کے بھٹکتے ہیں. ورنہ سیدھے رستے پر چلتا ہوا کون ہے جو اس سے الگ ہٹ کر قدم رکھ دے؟ بس جہاں بھی غیر کی آواز سنائی دیتی ہے اور آپ اس پر توجہ دیتے ہیں وہی موقع ہے आपके शैतान की गुलामी को कबूल करने का। पुराने जमाने में बाज कहानियां ऐसी होती थी जो हैं तो बज़ाहिर नामुमकिन जिन्नभूतियों की कहानियां, लेकिन उनमें सबक ऐसे होते थे जो सच्चाई के सबक थे। आजकल के जमाने में तो सबक आमूज कहानियों का रिवाज भी मिट चुका है। अक्सर कहानियां वो हैं जो महज जहालत पैदा करती हैं, लेकिन एक जमाना था जब इंसान में आला कदरों की पहचान थी और आला कदरों को जिंदा रखने की ख्वाहिश हुआ करती थी। इसलिए कहानियां बनाने वाले भी ऐसी कहानियां बनाते थे कि अगर उनमें डूब कर देखें तो कोई ना कोई सबक उनमें मिलेगा। एक उनमें से ऐसी तरस की कहानियां थी जिनकी तरस एक ही थी, अगर से किरदार बदल जाते थे। एक इंसान या एक शहजादे को एक मुहिम सर करनी है, अगर शर्त यह है कि दाएं बाएं से जो आवाजें आएंगी उनसे मुतसर होकर दाएं या बाएं नहीं देखना, अपने रास्ते से हटना नहीं है। अगर रास्ते से हट गए, अगर किसी हिर्स की आवाज पर लबैक कह दिया या किसी खौफ दिलाने वाली आवाज से डर कर बिदक गए, तो दोनों सूरतों में तुम वही पत्थर के हो जाओगे। अब ये कहानी तो बज़ाहिर नामुमकिनात की कहानी है, मगर मजहब की दुनिया में बयान ही यही होता है। इंसान जब सिरात मुस्तकीम पर चलता हुआ बाहर की आवाजों पर कान धरता है तो वहीं से उसके लिए रूहानी लिहाज से मरने का खतरा पैदा हो जाता है, और पत्थर हो जाने का यही मुराद है। और जब वो भटक जाता है, उस राह को छोड़ता है, तो उसकी रूहानी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। फिर वो शैतान का बंदा बनकर बाकी जिंदगी बसर करता है। ये मज़मून तो बिल्कुल खुला खुला और वाज़ेह है, लेकिन कहानियों में ये भी बताया जाता है कि अक्सर हैं जो बावजूद समझाने के, बावजूद ताकीद के, बावजूद बताने के कि इतना बड़ा खतरा दरपेश है, डराने वाली आवाजों की कोई भी हकीकत नहीं, हिर्स हवा देकर अपनी तरफ बुलाने वाली आवाजों में कुछ भी जान नहीं, वो तुम्हें कुछ भी अता नहीं कर सकेंगे, इससे बिल्कुल परवाह नहीं करने। इस बावजूद, इस समझाने के बावजूद अक्सर हैं जो पत्थर के हो जाते हैं। उस सफर में वो शहजादा जो कामयाब होकर आखिर तक अपने मकसद तक बामुराद पहुंच जाता है, वो रस्ते में जगह जगह पत्थरों के लोग देखता है, पत्थरों के बुत बने हुए, कहीं पत्थरों की औरतें हैं, कहीं पत्थरों के मर्द हैं, और बिल आखिर वो जो जिंदगी पाता है तो उससे पत्थर भी जिंदा हो जाते हैं। अब ये कहानी देखो कितनी अजीबोगरीब और मसनूई है, लेकिन नबूवत के मजमून पर कैसे सादिक आती है, हरफ पर हरफ पूरी उतरती है। नबी का जमाना वो है जबकि सब दुनिया इन आवाजों की तरफ कान धरती है और उन तमा की तरफ, मकामात की तरफ बढ़ती है जो इसे दिखाई देते हैं, सबज बाग दिखाई देते हैं, यहां आओ यहां तुम्हें जन्नत मिलेगी, यहां ऐशो इशरत के सामान है, तुम्हारी लज्जत के सामान है। जब इंसान उनकी तरफ मुतवज्जे होता है, उन तक पहुंचता है, तो उस वक्त उसको समझ आती है कि लज्जत तो आरजी सी चीज थी और हर लज्जत के साथ कोई दुख लगा हुआ है। हर लज्जत के साथ जो इस किस्म की लज्जत है जो खुदा की अता फरमूदा लज्जतों से बाहर है, किसी की हक तलफी भी है, किसी और इंसान के जायदाद पर हाथ मारने के बगैर ये जन्नत नहीं मिलती, किसी और शख्स के रिश्तेदारों और अजीजों पर हाथ डाले बगैर ये जन्नत नहीं मिलती, जब वो हाथ डालता है ऐसी जन्नतों पर, तब उसे समझ आती है कि ये जन्नत किसी न किसी के लिए जहन्नम जरूर पैदा करती है, और बगैर जहन्नम पैदा किए जन्नत हो ही नहीं सकती। और कुछ दिन के बाद तो ये जन्नत भी मिट जाती है और जन्नत वाले के लिए जहन्नम छोड़ जाती है, कभी भी नेक अंजाम नहीं होता। तो ये कहानी अंबिया के वक्त में लफ्जन लफ्जन बैन ही पूरी होती है, कोई भी इसमें शक नहीं। एक वजूद है, वो एक शहजादा रूहानी सल्तनत का जो खुदा के नबी होता है, वो न दाएं देखता है न बाएं देखता है, सीधा अपने खुदा की तरफ नजर रखे हुए बड़ी बहादुरी के साथ उस रास्ते चलता है और उसी की जिंदगी का नक्शा है जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में खींचा गया है। और इन शैतानी आवाजों से बचने का तरीक भी कुरान करीम की इस आयत ने हमें समझा दिया कि देखो अपनी ताकत से तुम बच नहीं सकोगे, ये विर्द करते हुए आगे बढ़ो, ला हौला वला कुव्वता, कोई भी खौफ नहीं है, वला कुव्वता और कोई ताकत नहीं है मुझे अच्छा बना देने की या मुझे कुछ अता करने की, इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। ये अगर विर्द जान रहे, अगर इसका मजमून समझ आ जाए और इंसान कामिल यकीन रखे तो यहां तौहीद की इबादत शुरू होती है। तौहीद में एक नफी भी है फिर मुस्बित बात है। पहले ला का इकरार है कि कोई भी नहीं, मगर ला हौला वला कुव्वता ने दो पहलुओं से तौहीद को रोशन कर दिया। एक ये कि तुम्हें जो खुदा के सिवा कोई नेमत की बात अता करता है वो झूठा है, नेमत वही है जो खुदा अता करे, जो उसके कवानीन के ताबे तुम्हें नसीब हो। अगर खुदा के सिवा कोई अपने अजाब से डराता है, जैसा कि फिरौन ने डराया था, जैसा कि आज भी खुदा के नाम पर उसके भटके हुए बंदे बाद दूसरों को डराते हैं कि अगर तुमने खुदा की आवाज पर लबैक कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कहते तो ये हैं कि तुम्हारी आवाज जिस पर लबैक कह रहे हो शैतान की है, मगर वो खुद शैतान होते हैं। और इसी तरह शैतान भेस बदल बदल कर, जैसा कि कुरान फरमा रहा है, बार दफा नसीहत के रंग में, बार दफा धमकाने के रंग में नेकी का लिबादा उड़ कर आता है, कहता है इस राह से हट जाओ वरना बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। जो डर जाए वो वही पत्थर हो जाते हैं, यानी उनका रूहानी वजूद खत्म हो जाता है। मगर नबी ना सिर्फ खुद बचकर चलता है और हमेशा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के मजमून पे से नजर रखता है, बल्कि ये तौहीद का शहजादा जब मंजिल तक जा पहुंचता है जहां खुदा इसे कबूल फरमा लेता है तो जिस पत्थर पर फूंक मारे वो पत्थर जाग उठता है, सदियों के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। देखो कैसा कहानी के अंदर भी गहरा सबक मौजूद है। हजरत मुस्लिम मौद ने भी एक रोया ऐसी ही देखी थी और खुदा के फजल और रहम के साथ विर्द करते हुए अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखा और सारी बलाएं गायब हो गईं। एक नज़ारा मैंने खुद भी देखा, बहन ही इसी किस्म का, लेकिन उसमें खुदा के फजल और रहम के साथ नहीं बल्कि रब कुल्लो शायन खादिमों का रब फाफजना वंसुरना वरहमना की दुआ थी जिसने मुझे बचाया और सारी मंजिल खुदा तआला के फजल के साथ खैर वाफियत से तय हुई। तो ये इर्द गिर्द के खौफ, इर्द गिर्द की हिर्स और तमे कुछ भी ना बिगाड़ सकें। तो ये एक सिर्फ रोया का तजुर्बा नहीं, अमली दुनिया में यही होता है। बस किसी न किसी दुआ के सहारे आपको सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना होगा, उसके बगैर नामुमकिन है। और नबी जब एक दफा सिरात मुस्तकीम अता कर दें तो फिर भटकने के दोबारा सामान गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, ये मज़मून फिर चल पड़ता है। तो ये ख्याल कर लेना कि मैंने अपने मकसद को पा लिया और मैं मकाम महफूज पे पहुंच चुका हूं, ये महज़ वहम है, एक दिल का धोखा है। अंबिया को इसलिए मासूम कहा जाता है कि अंबिया इस सड़क पर चलते हुए भी खुदा की हिफाजत में इस तरह कुल्लियतन लपेटे जाते हैं गोया खुदा की गोद में आ गए। बज़ाहिर वो चलते हैं मगर वो खुदा की गोद में आगे बढ़ते हैं, ये मकाम मासूम है। मगर हर शख्स को ये मकाम नसीब नहीं होता और हर शख्स के लिए जो नबियों की पैरवी करता है अगर उस पैरवी में कोताही करे तो ये खतरा मौजूद रहता है कि इस राह पर चलते हुए भी वो बिलाखिर मग़ज़ूब हो जाए, यानी इस राह के तकाजे पूरे ना कर सके, या दौलदीन हो जाए, दुनिया की लज़तों में खोया जाए और राह से हट जाए। बस दोनों तरीक वही पत्थर बनाने वाले तरीक हैं और शैतान की इबादत के मुख्तलिफ نام رکھ دیے گئے ہیں, مگر ہے شیطانی کی عبادت. جب بھی صراط مستقیم سے آپ کسی خوف یا حرص کے نتیجے میں اپنا قدم ہٹائیں گے تو وہیں سے خدا کی عبادت ختم اور شیطان کی شروع. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھنے کے باوجود پھر کتنے ہیں جو ان آوازوں پہ دھیان نہیں دیتے. اب یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہر شخص خود دے سکتا ہے, اور ہر شخص اگر تقویٰ کا کوئی بھی شائبہ اپنے اندر رکھتا ہو یہ جواب دے گا کہ ہاں, بسا اوقات کئی دفعہ ظاہر طور پر, کئی دفعہ مخفی طور پر, لا علمی میں بھی شیطان کی آواز پر لبیک کہہ چکا ہوں اور اس راہ سے ہٹ چکا ہوں. پھر واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ کے نبی ہی کا فیض ہوتا ہے کہ واپسی ہو جاتی ہے, اور خدا تعالیٰ کے انبیاء ان راہوں کی باریکیوں سے خوب واقف ہوتے ہیں, اس لیے وہ خوب کھول کر بیان کرتے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہی جو راہیں خود نہیں دیکھی ان کو اس صفائی سے بیان فرماتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا تھا. گناہ کی باریک ترین راہوں کو بھی کھول کر روشن فرما دیا کرتے تھے کہ اس طرح بھی گناہ پیدا ہوتا ہے, اس طرح بھی گناہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ ان راہوں پر چل چکے تھے, اس لیے کہ کوئی انسان بھی توحید کی اعلیٰ منزل طے نہیں کر سکتا جب تک ان راہوں کے خطرات سے آگاہ ہو کر ان پر غالب نہ آ چکا ہو. بس نبی کے تجربے عام گناہگار کے تجربے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ لوگ عام سمجھ نہیں سکتے اس بات کو, کیونکہ نبی پر ابتلاء کی بہت باریک راہیں آتی ہیں اور ہر راہ میں وہ کامیاب گزرتا ہے, کامیابی سے گزرتا ہے. ہر باریک سے باریک چھپے سے چھپے خطرے کو بھی جانتا ہے, پہچانتا ہے, اور ہر دفعہ شیطان کی آواز کو رد کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے تجربہ اس کا ایسا ہے جو گناہگار کو بھی کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ گناہگار کو اتنی باریک راہوں سے نہیں گزرنا پڑتا جن باریک راہوں سے نبی گزرتا ہے, اور اس کو تقویٰ کی باریک راہیں کہا جاتا ہے, گناہ کی باریک راہیں نہیں کہا جاتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تجربے کو تقویٰ کی باریک راہیں فرمایا ہے. تقویٰ سے مراد ہے بچنا, بنیادی معنی یہ ہے. وہ باریک راہیں جن سے نبی یا خدا کا نیک بندہ بچتا ہوا گزر جاتا ہے, اس لیے جب بچ کے گزرتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ خطرہ تھا کیا, اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس خطرے سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو تجربہ اس کا ایسا عظیم شان, اتنا وسیع ہے کہ جب وہ بیان کرتا ہے تو ہر گناہگار سمجھتا ہے میرے دل کے اندر جھانک کے اس نے دیتا ہے, یہ ہر باریک سے باریک کیفیت کو جانتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائشوں سے وہ اپنے ذہنی اور قلبی سفر میں گزر چکا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہر غلط آواز کو رد کر کے گزرتا ہے, اسے قبول کرتا ہوا نہیں گزرتا. اور یہی فرق ہے گناہگار اور معصوم نبی میں, کہ گناہگار قبول کرتے ہوئے گزرتا ہے, اور دنیا اس سے بھری پڑی ہے. نیک بندوں میں بھی کثرت سے ایسے ہیں جو ان ٹھوکروں میں مبتلا ہوئے اور ٹھوکر کھا گئے, لیکن پھر اٹھتے ہیں, پھر بچ کے گزرتے ہیں. تو یہ ہے وہ استغفار کا مضمون جسے تمام تر باریکی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. استغفار کے مضمون میں اگر غلطی کریں گے تو یہ خیال پیدا ہوگا کہ ابھی استغفار کی اور ابھی چھٹی ہوگی گناہوں سے, توبہ کر لی اور بس ختم. توبہ استغفار کے ساتھ ممکن ہوتی ہے, اور استغفار میں پوری طرح صفائی پیش نظر ہے, یعنی ہر طرح کے گناہ سے کو اتنا اس کو دبا کر ذلیل اور رسوا کر دینا کہ وہ دکھائی تک نہ دیتے. اور یہ وہ ذلیل اور رسوا کر کے اس کو دبا ڈالنا, یہ دراصل استغفار ہے. اور آدم جن پتوں کے پیچھے چھپ رہا تھا وہ استغفار کے پتے تھے, और इसमें भी अब देखें कितना बारीक फर्क है रियाकारी और गुनाह दबाने में। रियाकारी का यह मतलब होता है कि पत्तों के पीछे छुप जाए, अंदर वही करता रहे जो पहले गुनाह थे और देखने वाले को पत्ते दिखाई दें। हकीकी इस्तिग़फ़ार का मतलब यह है कि जब वो पत्ते आ जाते हैं तो बदन के दाग वाकियातन मिट जाते हैं और इंसान के गुनाह उनमें छुप कर नजर से गायब होते हैं। अब नजर किसकी थी जो देख रही थी? जब इस मजमून को समझेंगे तो इस्तिग़फ़ार के मजमून को रिया के मजमून से बिल्कुल अलग देखेंगे। बाइबल ने गलती की और यह समझा कि वो जाहिरी तौर पर खुदा की आंख से छुप रहा था। जाहिरी तौर पर वो छुप सकता ही नहीं था। नामुमकिन है कि किसी दरख्त की ओट में, किसी घास फूस के पर्दे में जाकर कोई इंसान अल्लाह से छुप जाए। वो इस्तिग़फ़ार वो शजरा तैयबा के पत्ते थे जिनके पीछे वो अपने गुनाह को इस तरह ढांप रहा था कि खुदा को भी वो गायब होता हुआ दिखाई दे, खुदा भी उस गुनाह को ना देखे। देख सकने के बावजूद अगर नहीं देखता तो वो गुनाह मिट गया है। और ये कामिल इस्तिग़फ़ार है कि उसको ढांपे मगर दुनिया वालों की नजर से नहीं, अल्लाह की आंख से ढांप दे। खुदा भी देखे तो उसमें उस गुनाह का कोई निशान बाकी ना रहे। ये वो कामिल इस्तिग़फ़ार है जिसके बाद नई जिंदगी पैदा होती है। और इसी इस्तिग़फ़ार की तलाश दरअसल मोमिन का हकीकी जहाद है। इस जहाद की राहों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने भी बहुत ही बारीकी से खोल खोल कर बयान फरमाया। और ये इसलिए आज के मसाइल का सबसे अहम मसला है कि हमारा जहाद ही गुनाहों से निकाल कर बनी नौ इंसान को अल्लाह ताला के पाक बंदों में शामिल करना, सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों में उनको दाखिल करना और तकद्दुस का ऐसा लिबास अता करना है जो फिर फटता नहीं है, फिर हमेशा साथ दिया करता है। इतना बड़ा काम है और हम खुद दागदार और गुनाहगार हैं। अगर हम अपनी सफाई की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो हमारा दावा महज झूठ का दावा होगा। ये बात भूल जाए कि दुश्मन हमारी बुराइयां देख रहा है कि नहीं, जानता है कि नहीं, ये सब बेमानी बेहकीकत बातें हैं। एक ही आंख है जो खुदा की आंख है, वो देख रही है, तो जो देख रही है वही सच है। उसकी नज़र में अगर हम दागदार ही मर रहे हैं, उसकी नज़र में अगर हम ऐसे मर रहे हैं कि हमारे जो भी गंद थे हमने उनकी सफाई की कोशिश कभी नहीं की, तो ये मरने वाले खुदा के बंदों के तौर पर नहीं मरा करते। ये बंदे करने मरने वाले शैतान के बंदों के तौर पर मरते हैं। वो लोग जो दयानतदारी से सफाई करते हैं, कोशिश करते हैं और फिर इस हालत में वो जान दे देते हैं, तो अल्लाह ताला का एहसान और रहमत है कि वो उनको भी अपने बंदों में शुमार कर लेता है। बस मगफरत की राह आगाज में भी महफूज है और अंजाम में भी महफूज है। अगर मगफरत के तकाजे आप सब पूरे कर लें और इस्तिग़फ़ार इस हद तक करें कि गुनाह कुल्लियतन मिट जाए, तो ये तो मगफरत का जो बहुत ही आला दर्जे का तकाजा था वो पूरा हो गया। इसके ऊपर फिर कोई कामयाबी नहीं है। और यही वजह है कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार में हर दूसरे नबी से ही नहीं, हर दूसरे इंसान से भी आगे बढ़ते। और जाहिर दुश्मन कहता है कि अगर गुनाह नहीं किए थे तो इतना इस्तिग़फ़ार क्यों कर रहे? उन बेवकूफ़ों को पता नहीं कि इस्तिग़फ़ार का हकीकी माना वही है जो मैं अब बयान कर रहा हूँ। ऐसा गुनाहों के दाग, उसका निशान मिट जाना, यानी उसका तसव्वुर मिट जाना कि खुदा की आंख भी देखे तो वहां उसको कुछ दिखाई ना दे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार इस आला शान का इस्तिग़फ़ार था कि गुनाहों की राहों से गुजरे तो आप भी थे, उन गुनाहों की राहों से बचते हुए गुजरना और इस्तिग़फ़ार के जरिए उनके ख्यालात तक को मिटा देना, ये वो सफर था जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا جوئی کا سفر تھا, اور ہمارے سفر لازماً اس کے تابع ہوں گے تو ہمارے لیے نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا, مگر گناہگار کے لیے بھی اس میں بڑی خوشخبری ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی جو نوعیت اور اس کا جو مرتبہ اور اس کا علو, اس کی بلندی, یہ ساری چیزیں عام انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی, مگر نقش پا جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو چومتے ہوئے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ استغفار کو زندگی کا لازمہ بنانا ہوگا, اور استغفار کا معنی منہ سے بخشش مانگنا نہیں, استغفار کا معنی ہے گناہوں کے داغ مٹا دینا, ان کو کلیتاً چھپا دینا اتنا کہ وہ کل عدم ہو جائیں. اب یہ جو تجربہ ہے انسانی زندگی کا, یہ نیک لوگوں کے تجربے کے علاوہ عام دنیا کے مسائل میں بھی اسی قسم کے تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے کہ انسان نے اگر باریک مسائل سمجھنے ہوں تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, جو موٹے موٹے مسائل اس سے ملتے جلتے ہیں ان پر نظر رکھے تو باریک مسائل سمجھ آ جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے ایک قاتل کے متعلق, جس نے کسی بڑے آدمی کو بنی اسرائیل میں قتل کیا تھا, فضل بو کے لفظ استعمال کیے کہ اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو اس سے ملتی جلتی مثالوں پر غور کرو. کوئی ایسا قاتل ہے جس کی طرز قتل کی طرز اس طرح کی ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں موڈس آپرینڈی. کہتے ہیں ہر قاتل کا موڈس آپرینڈی بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا ہے, اس کی جو ساخت ہے دماغ کی, وہ جس طریق پر قتل سوچتا ہے, آلہ اور ہتھیار بھی بدل جائیں وہ طریق ضرور دکھائی دے دے گا, اور چوٹی کے جو سراغ رسان ہیں وہ اس موڈس آپرینڈی کے ذریعے قاتلوں کو پہچانا کرتے ہیں. اور یہ بات قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کو سمجھائی کہ بنی اسرائیل میں جو قتل ہوا ہے ایک بڑے آدمی کا, اس کو اس کی مثالوں پر پرکھ کے دیکھو, اس شخص کی حرکتیں تمہیں دکھائی دے جائیں گی. اس کا ترجمہ غلط کر لیا گیا مگر میں اس تفصیل میں نہیں سمجھ جاتا, اصل یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا. تو یہاں بھی بہترین طریق یہ خدا باریک مسائل کو سمجھنے کا یہی ہے کہ موٹی موٹی باتیں جو دکھائی دیتی ہیں ان کے اوپر باریک مثالوں کو پرکھا جائے. اب آپ دیکھیں کہ دھوبی کپڑے دھوتا ہے اور کرتا کیا ہے, داغ مٹ جائیں. اس غرض سے نہیں دھوتا کہ داغ رہیں مگر دکھائی نہ دیں. جو اس غرض سے کرتے ہیں وہ منافقت ہے, وہ دکھاوا ہے, اور وہ پھر کبھی نہ کبھی پکڑے بھی جاتے ہیں. مگر دھوبی جس نیت سے داغ دھوتا ہے وہ استغفار ہے, اس کو پٹکتا ہے بار بار, پتھروں پر مارتا ہے, راتوں کو جا کے محنت کرتا ہے, اس میں مسالے ڈالتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ داغ بالکل مٹ جائے, یہاں تک کہ دکھائی نہ دے. تو دکھائی نہ دینا ہر دفعہ, یا دکھائی نہ دینے کی کوشش ہر دفعہ منافقت نہیں ہوا کرتی, اعلیٰ درجے کی سچائی بھی یہی کام کرتی ہے. منافق گند کو رکھتے ہوئے چھپاتا ہے, اور اعلیٰ درجے کا نیک انسان گند کو دور کر کے مٹاتا ہے, اور دکھائی یہاں تک کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. اب اس میں ایک سیکنڈ میں تو یہ کپڑے رند ہو جایا کرتے ہیں. اگر لوہے کی کوئی چیز ہے جس پہ زنگ لگا ہوا ہے تو دیکھیں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے اس کو آہستہ آہستہ تن کو صاف کرنا, ریتیوں کے ساتھ کپڑے مار مار کے, کچھ مسالے لگا لگا کے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو زندگی کی حقیقتیں خواہ وہ روحانی ہوں خواہ جسمانی ہوں, وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی حقیقتیں ہیں. جو دکھائی دیتی ہیں ان پر تو غور کرو, اگر ان پر بھی غور نہیں کرو گے تو جو نہیں دکھائی دیتی ان پر کیسے غور کر سکو گے, ان کو کیسے سمجھ سکو گے؟ بس داغوں کو دور کرنے کا مضمون جو دنیا میں دیکھتے ہو, अपनी रूह पर उसी को इस्पा करो, उसी को इस्तेमाल करो, तो फिर उम्मीद बन जाती है कि अल्लाह गफूर रहीम है। हमारे हमारी जिंदगी के मिट जाने से पहले अगर दाग ना भी मिटे तो अपनी रहमत से उनको धो देगा और कल अदम कर देगा। ये अफ़ू है, यानी खुदा का सिर्फ मग़फ़रत नहीं फरमाता बल्कि अफ़ूवन भी है। अफ़ूवन का यही मतलब है कि है तो सही, वो सरफ़ नज़र फरमा लेता है। तो गोया नहीं, गोया दाग था ही नहीं। जब एक इंसान अपनी नज़र ही फेर ले तो जो चीज़ मौजूद है वो भी दिखाई नहीं देगी। तो खुदा को दिखाई तो देता है मगर सलूक ऐसा फरमाता है कि गोया उसने देखा नहीं। ये अफ़ूफ़ का मुकाम है। तो जब खुदा ताला अफ़ूफ़ का वादा भी फरमा रहा है, वो सहारे भी अता कर रहा है, तो गुनाहगार बंदे के लिए मायूसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चाहिए कि हकायक की दुनिया में उतर कर मारूफ हकीकतों को पहचाने, उनकी मिसालों को निस्बतन गैर मारूफ हकीकतों पर जिस्पा करे, तो उसकी जिंदगी का सफर बिल्कुल खुला खुला और साफ और रोशन हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसे दिखाई ना दे सके। बाद लोग सुनते हैं कि एक ही नजर ने किसी को पाक कर दिया। अब किसी एक नजर से कपड़े तो साफ होते देखे नहीं कभी, कभी किसी एक नजर से सर्दियों के लगे हुए जंग तो दूर होते देखे नहीं। और ये कानून किसने बनाया है? क्या उस खुदा ने नहीं बनाया जो रूहानी कानून का भी खालिक है? तो तजाद कैसे हो सकता है? मगर मादी कवानीन में भी बाज तेजी से रूनुमा होने वाले वाकयात हमें दिखाई देते हैं। मसलन वो जंगदार चीज जिसके ऊपर साल हा साल से जंग लगा हुआ है, उसको रगड़ रगड़ कर साफ करना और दवाओं के साथ साफ करना बाद दफा मुमकिन नहीं होता, तो इंसान उसको भट्टी में डाल देता है। और जो काम सालों की मेहनत नहीं कर सकती वो भट्टी के चंद लम्हे कर दिखाते हैं, लेकिन आग में जलना पड़ता है। बस वो लोग जो बाद दफा अचानक इस्तिग़फ़ार के नतीजे में जिंदा हो जाते हैं, वो लोग जो जिनके अंदर एक अचानक इनकलाब रूनुमा हो जाता है, उनकी तकलीफ भी उसी हद तक बड़ी होती है। और बगैर तकलीफ से गुजरे इस्तिग़फ़ार हो ही नहीं सकता। अगर आग भड़क उठी है उनके अंदर एक नदामत की और शर्मिंदगी खुदा के हुजूर शर्मिंदगी की और तौबा अपने अंदर एक जहन्नम पैदा कर रही है, उस जहन्नम में उसके सारे गुना भड़क कर एकदम खत्म हो जाएंगे। बस नई जिंदगी अचानक जो मिलती है वो भी कानून कुदरत के मुताबिक है। तो या तो इस्तिग़फ़ार ऐसा करो कि जिंदगी में एक इनकलाब बरपा हो जाए, आनन फानन तुम उस आग में जल जाओ जो खुदा तआला की हैबत और उसकी अजमत उसके रोब की आग है, तो फिर ये दुरुस्त है कि एक ही दिन में तुम्हारी काया पलट सकती है। मगर ऐसे लोग हैं कितने कितने हैं जिनमें ये तौफीक है कि इतने बड़े अजाब में से गुजरे, क्योंकि वाकयतन गुनाह की जिंदगी से कुल्लियतन इज्तनाब कर लेना एक बहुत बड़े अजाब को चाहता है। और यही वो अजाब है जिसमें से अल्लाह ताला फरमाता है हर शख्स गुजरेगा जरूर। बाद आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हैं, लंबा वक्त देते हैं, मेहनतें करते हैं, बिल आखिर अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल हो तो निजात पा जाते हैं। कुछ हैं जिनके अंदर एकदम नदामत और शर्मिंदगी की आग भड़क उठती है, और वो जो तौबा करते हैं वो आनन फानन तौबा है। बस बाज़ दफ़ा नेक लोगों की नज़रें जो जिंदा करती हैं, जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें जिंदा किया करती थीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को भी खुदा तआला ने आपकी गुलामी में यही मलका अता फरमाया कि बाज़ दफ़ा सहाबा बयान करते हैं कि देखा और काया पलट गई, एक नया वजूद पैदा हो गया। तो जिस हद तक वो वजूद पैदा होता हुआ हमें नजर आता है हम उसे एक गायबाना मौजदा समझते हैं जिसमें कानून कुदरत कार फरमा नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। वो नजर उन पर काम करती है जिनकी दिल के अंदर एक ऐसा इनकलाब बरकरार हो जाता है कि वो हर किस्म के दुख को बर्दाश्त करने के लिए ना सिर्फ आमादा होते हैं बल्कि बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं उनको। हर लज्जत की चीज से अपनी नाशनाई गोया कभी वाकिफ ही नहीं हुए थे, उसको तमाम जिंदगी के आरामों को तज दिया, एक नई फकीराना जिंदगी बसर कर ली, जो कुछ था हाथ में वो सब कुछ खो बैठे हुए थे। ये वो इस्तिग़फ़ार है जो भड़क उठता है बाज़ार, और ये इस्तिग़फ़ार कुर्बानी जरूर देता है। ये ख्याल नहीं है कि नजर पड़ी और आप ठीक हो गए, नजर के नतीजे में अगर कुर्बानी का एक कुर्बानी भड़क उठे एकदम ऐसी भड़के कि उसके शोले आपकी जात के हर दूर गैरुल्लाह के वजूद को भस्म कर डालें, तो ये अचानक होने वाला वाकया ये वाकयातन रूनुमा होता है, लेकिन फर्जी तौर पर कहानियों के रंग में नहीं बल्कि कानून वही है। बस आपका कीमत एक साल तक रगड़ रगड़ कर दें, अचानक दे दें, कीमत उस देनी पड़ेगी, और हर चीज जो हासिल की जाती है उसकी कीमत देनी पड़ती है। इस फर्जी दुनिया में न रहें कि अचानक किसी की नजर ठीक कर दे, किसी बुजुर्ग की कब्र पर दुआ हो गई तो आप जिंदा हो गए, ये सब झूठ है, फसाद है, ये शैतानी है। इसका अल्लाह और अल्लाह ताला के सिखाए हुए मजामीन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार की राहों को और बाद ऐसी गलतफहमियों को जो इस रस्ते में लोगों को दरपेश हुई खूब खोल खोल कर बयान फरमाया है। मगर सबसे पहले शायद मैंने इस आयत का तर्जमा नहीं किया था, आयत जो तलावत की थी कर दिया। सूरह अल हिज्र की आयत 40 से 44 थी जिनकी मैंने आपके सामने तलावत की। قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين। शैतान ने कहा, ए मेरे रब, क्योंकि तूने मुझे गुमराह करार दे ही दिया है तो तू तो बेवजह, इस पे भी एक बड़ी हिकमत की बात है। शैतान जानते पूछते शरारत कर रहा है और खुदा तरह से जो कलाम करता है उसमें कोई झूठ नहीं बोलता। वैसे कहते जब तूने मुझे गुमराह करार दे दिया है तो ये तो लाजमी बात है कि तेरा फैसला दुरुस्त हुआ करता है, और अगर ये फैसला दुरुस्त है तो फिर मुझे गुमराह के तौर पर ही अब रहना पड़ेगा। अब गोया मेरा मुकद्दर बन गया कि क्यामत तक अब मैं गुमराह ही रहूंगा, तूने मुझे कह जो दिया कि क्यामत तो गुमराह है, तो फिर मैं क्यामत तक गुमराही के काम क्यों ना फिर करूं। और मेरा नफसी इंतकाम एक ये है, क्योंकि मगरूर इंसान जब मारा जाता है तो उसका दिल कुचला जाता है, वो इंतकाम की राहें तलाश करता है। तो वह खुदा ताला से इस शैतान ने उसकी बात मानते हुए भी इंतकाम की एक राह तजवीज की है। वो कहता है बहुत अच्छा, मैं गुमराह, मेरा अब ये मकसद बन गया, लाउजैये नन्ना लहूँ फिल अर्ज़ व लाउयन्हुम अजमईन, कि जो भी बंदे हैं तेरे पैदा करदा और तेरे गुलाम होना चाहिए जिनको, मैं उन सब के लिए जीनत के ऐसे ऐसे सामान पैदा करूँगा, यानी ऐसी ऐसी जीनत की जगह दिखाऊंगा उनको, और उगवियन्हुम अजमईन, और उनको गुमराह करने के दूसरे ज़राए भी अख्तियार करूँगा, यहां तक के वो सारे के सारे तुझे छोड़ देंगे। बस मैं अपनी गुलामी करने वालों की तादाद बढ़ा लूंगा और तेरी इबादत करने वालों की तादाद कम कर दूंगा, और ये है मेरा इंतकाम कि तूने मुझे क्यों गुमराह करार दिया। लेकिन जानता है कि बाजों पर इसकी बस नहीं चल सकती। ये अच्छी तरह वाकई जानता है कि जो सच्चा खुदा का बंदा हो उस पर शैतान का जर्रा पर भी असर नहीं हो सकता, तो साथ ही कह दिया इल्ला इबादा का मिनहुल मुखलसीन, اجمعین ہوں گے کثرت کی وجہ سے, مگر جو تیرے بندے مخلص ہو چکے ہیں تیرے, اور یہاں مخلصین نہیں بلکہ مخلصین پر بتایا گیا ہے. قرآن کریم نے شیطان کی طرف جو لفظ استعمال منسوب کیے ہیں وہ مخلصین ہیں, وہ بندے جن کو تو نے خالص کر دیا ہے, جو تیرے نزدیک خالص ٹھہرے ہیں, وہ نہیں جو اپنے اخلاص جتاتے پھرتے ہیں. وہ بندے جو ہیں وہ تو میرے دائرہ اثر سے ہی باہر ہیں, میری ان پر کوئی پیش نہیں جائے گی. وہ بندے ہیں محفوظ بندے ہیں, ان بندوں میں ہو کر مرنا ہے, یہ ہمارا مقصود حیات ہے. اور ان باتوں کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ باریک سے باریک راہیں دکھائی دیں اور پتہ چلے کہ ان باتوں کا لحاظ کیے بغیر ہم مخلصین میں شامل نہیں ہو سکتے. بندے تو رہیں گے ہی, ہر چیز جو پیدا ہوئی وہ خدا ہی کا بندہ ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم, وہ جو میں بات کہی تھی کہ سیدھے رستے پر چل کر پھر بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, اور سیدھا رستہ کوئی لکا ڈھپا رستہ نہیں ہے, لکا چھپا رستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا صراط علی مستقیم, یہ دیکھو میری راہ کتنی صاف کھلی کھلی اور سیدھی راہ ہے, اس راہ پر چل کر کوئی بھٹک سکتا ہی نہیں. مستقیم کا ایک ہی معنی بھی ہے, جو راہ سیدھی ہے اس میں بل فریب کے ساتھ آپ کیسے چل سکتے ہیں. بندوق کی نالی اگر سیدھی ہے تو گولی سیدھی گزرے گی, اس لیے تیری نالی میں سے تو تیرا سفر ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے بن ہی نہیں سکتے اگر صراط مستقیم پر رہیں. یہ صراط سیدھی ہے تو ان کو بھی سیدھے ہی چلنا ہوگا. انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان, میرے بندے وہ ہیں تجھے ان پر ایک ذرہ بھی غلبہ نصیب نہیں. سلطان غلبے کو کہتے ہیں, اس سلطان ان کسی قسم کا کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرے بندے اور تیرے بن جائیں. الا من تبا کا من الغاوین, من الغاوین, اور جو باقی ہیں ان پر بھی تجھے غلبہ نہیں ہے, تجھے غلط فہمی ہے, جب تک وہ خود تیرے نہیں ہوں گے تیرے پیچھے نہیں جائیں. اس لیے تیرا یہ تکبر بھی جھوٹا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اپنا بنا لوں گا, میرے بندے تو میرے ہی رہیں گے, جو میرے ہوتے ہوئے خود ٹیڑے ہوں گے وہ تیرے پیچھے جائیں گے. اور ان پر فخر کرنا بالکل بے معنی بات ہے, کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہی اندرونی قیدیوں کی وجہ سے تیری طرف جانے کی تمنا رکھیں گے تو جائیں گے, تیرے بندوں کو زبردستی تو نہیں کھینچ سکتا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور پھر ان سب کا ٹھکانہ اجمعین کلیتاً جہنم ہے. اتنی واضح کھلی کھلی بات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو توقع رکھتا ہے کوئی چھپی ہوئی توقع تو نہیں ہے. صراط کھول دی گئی ہے, سیدھا رستہ ہے, اس پر چلو. جہاں آوازیں آئیں وہاں خیال کرو کہ یہ آوازیں کیسی ہیں, اور اگر صراط سے ہٹنے کی آوازیں ہیں تو جھوٹی ہیں. اب اس میں کون سی مخفی بات ہے؟ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو سچ پر قائم رہتے ہوئے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. آواز میں کچھ ٹیڑھا پن ضرور ہوا کرتا ہے, اور اسے قبول کرنے سے پہلے انسان سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ تیری بات ہے. اس لیے دھوکے کا کوئی سوال نہیں رہا. جو انسان قدم اٹھاتا ہے جان بوجھ کر اپنے اندرونی کجی کی پیروی کرتے ہوئے, وہ راہ سے بھٹکتا ہے. جب بھٹک جاتا ہے تو پھر شیطان کی غلامی کا دور شروع ہو جاتا ہے. اتباع کا لفظ بتا رہا ہے کہ غاوین جو ٹیڑے ہوں وہ محض ایک غلطی کی وجہ سے کلیتاً شیطان کے بندے نہیں بن جایا کرتے. ایک غلطی کی وجہ سے شیطان کے قبضے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بس جو لگیں گے وہ بھی خود ہی لگیں گے تیرے پیچھے, اور ایک ٹھوکر کے بعد پھر اگلی کے بعد پھر اس سے اگلی, اور یہ سلسلہ ہے جو सिलसिलावार आगे बढ़ता चला जाता है। बस अपने नफ्सों में हर इंसान देख ले, अपना जायजा ले ले, तो ये कोई इतने बड़े आरफाना मजामी नहीं है कि समझ ही ना आए। इतनी खुली खुली बातें हैं और कुरान ने इतनी खोल दी हैं कि उसके बाद किसी के लिए आंखें बंद कर ये ख्याल कर ले, आंखें बंद करके ये ख्याल करना कि मुझे पता नहीं था मैं इसलिए कर रहा हूं, बिल्कुल झूठ है। कोई भी खुदा, कोई भी इंसान अगर यकीन कर ले कि फलां शख्स शक में मुबतला था और फिर उससे गलती हुई है, उसको सजा नहीं दिया करता। अगर उसमें इंसाफ हो तो नहीं देता, समझे कानून की जुबान में कहते हैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। नजर तो आ रहा है कि गलती की है इसने, मगर हम इस बात का इसको बेनिफिट यानी फायदा पहुंचा रहे हैं कि लगता है कि इसको गलती करते वक्त शक था कि ये गलती है भी कि नहीं, इस शक का फायदा दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला शक का फायदा क्यों ना देगा। इसलिए खुदा ताला ने मजामीन इतने खोल दिए हैं कि शक की गुंजाइश ही कोई नहीं छोड़ी। हर इंसान अपने नफ्स को जानता है, हर इंसान हर गलती के वक्त समझ रहा होता है कि ये गलती मैं क्यों कर रहा, और कोई हिल्स है, और हर गलती में किसी की हक तलफी जरूर होती है, हर गलती में तवाज़ुन जरूर बिगड़ता है। जब तिजारत के जरिए जायज तरीके से आप कोई दौलत हासिल करते हैं तो कभी भी आपकी जमीर ने चुटकी नहीं दी, लेकिन जो रिश्वत के जरिए दौलत हासिल करता है या धोखा देकर लेता है तो पहली दफा जरूर जमीर चुटकी भरता है। ये हो ही नहीं सकता कि उसको चुटकी महसूस ना हुई। फिर इत्तबा का मजमून शुरू हो जाता है, फिर वो शैतान की पैरवी शुरू कर देता है, उसके खुतवात पर चलने लगता है। फिर रफ्ता रफ्ता वो आवाजें मर गईं, वो दर्द के एहसास मिट गए, और ये वो मर्द है जो फिर इंसान जो पत्थर हो जाता है, पत्थर ना सुनता है ना उसको कोई एहसास रहता है। तो जमीर के पत्थर होने का मतलब ही यही है कि वो एहसास से आरी हो जाता है। और कुरान करीम ने जो फरमाया कि जहन्नम में, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, तो वहां भी यही पत्थर है। इंसान तो वो हैं जिनके अंदर कुछ इंसानियत का गलबा बाकी था, कुछ इंसानियत का मिजाज बाकी था, मगर उनके गुनाहों ने अक्सर सूरतों में उनको मसमूम और माउफ कर दिया था। बस वो सजा से बचेंगे तो नहीं, लेकिन उससे बढ़कर गुनाहगार ऐसे भी हैं जो पत्थर हो चुके थे, और बड़ी भारी तादाद है ऐसे पत्थरों की आज दुनिया में जिनके मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है इनका इन जहन्नम का ईंधन बनना लाजमी और यकीनी। तो इन बातों को समझते हुए इस्तिग़फ़ार की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी है, और इस्तिग़फ़ार को उसकी बारीकियों के साथ समझना जरूरी है। इस सिलसिले में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद इक़्तबासात में आज शुरू करूंगा और इंशाल्लाह आइंदा खुतबे में भी जारी रखूंगा। तौबा की हकीकत, ये मलफूजात जिल एक सफा 304 से ये इबारत ली गई है कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में फरमाया, गुनाह की ये हकीकत नहीं है कि अल्लाह गुनाह को पैदा करे और फिर हजारों बरस के बाद गुनाह की मुआफ़ी सूझे। यानी इस एक फिक्रे में ईसाइत की इमारत कुल्लियतन मुनज़्ज़िम कर दी गई। एक ही फिक्रा है लेकिन सारी ईसाइत की इबारत खाक से मिला दी गई, क्योंकि उनका तस्वुर यह है कि आदम को तो पैदा किया था खुदा ने, मगर गुनाह का हकीकी इलाज मसीह को बताया, और इस तमाम अरसे में मसीह की आमद से पहले पहले गुनाह का हकीकी इलाज हो ही नहीं सकता था। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुनाह की ये हकीकत नहीं है कि अल्लाह गुनाह को पैदा करे और फिर हजारों बरस के बाद गुनाह की मुआफ़ी सूझे। अच्छा भी अब मुआफ़ी तो करना क्या करें इसके लिए, फिर वो मसीह को पैदा कर दे। आपने भी कानून कुदरत का हवाला दिया है, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो चीजें दिखाई दें और जो खुदा ने पैदा की हैं और खुदा के कायम बनाए हुए कवानीन हैं उनको आप समझें तो जो कानून नजर से ओझल हैं वो भी समझ आ जाएगी। यही तरीके इख्तियार करते हुए मुस्लिम इस्लाम फरमाते हैं कि जैसे मक्खी के दो पर हैं, एक में शिफा और दूसरे में जहर, बरेक वक्त मौजूद है। ये नहीं कि जहर पहले पैदा किया और मक्खी के शिफा का पर बाद में पैदा हुआ। और ये जो आदत है मक्खी की, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि मक्खी जब भी गिरती है बाईं तरफ गिरती है, और बाईं तरफ गिरने से एक बात तो ये बात पैदा होती है कि क्योंकि वो गंद खाती है इसलिए बायां पर गंद में मुबतला होगा, और जरासीम लिपटेंगे तो बाएं पर से लिपटेंगे, क्योंकि जब बैठ के झुकेगी एक तरफ तो बाईं तरफ झुकेगी। दूध में भी गिरती है तो बाएं पर के साथ गिरती है, जब आप देखेंगे तो टेढ़ी उसको तैरता हुआ देखेंगे। फरमाया उसका दायां पर भी डुबो दो, उसमें शफा है। तो हज़रत मसीह मौऊद इसी हदीस की तरफ का इसी का इशारा फरमा रहे हैं या इसी का हवाला दे रहे हैं कि मक्खी क्या के अंदर जहां जहर पैदा फरमाया गया शिफा भी साथ ही पैदा फरमा दी गई, और ये हमेशा से इसी तरह है। ना मक्खी की आदत बदली ना ये मजमून तब्दील हुआ, ये तो उसी तरह चला आ रहा है। सिर्फ ये सवाल पैदा होता है कि वो शिफा कैसे हो गई। ये वहम तो नहीं कहीं कि दूसरे पर में शिफा है, ये वो मजमून है जिसको कम से कम होम्योपैथ तो जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि इंसानी रद्द अमल एक तबी अमर है। कम से कम मैंने कहा था, वरना सारे अहले इल्म जरूर समझ सकते हैं, मगर होम्योपैथ के लिए तो मफरी कोई नहीं इसको समझे बगैर, इसको माने बगैर उसका इल्म ही बातिल हो जाएगा। हर वो वजूद जिसके अंदर कोई जहर हमला आवर हो उसके खिलाफ एक रद्द अमल उसमें पैदा होता है और मुदाफियत की एक ताकत पैदा होती है। बस अगर एक पर ऊंचा रखती है मक्खी और दूसरा गिरता है गंदगी में, तो वो पर जो हमेशा अलग रहा है उसमें मुदाफियत की ताकत पैदा होगी। अब ये वो मजमून है जिसको अहमदी साइंसदानों को देखकर गहराई में उतर कर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के निशान के तौर पर पेश करना चाहिए। मगर मुसलमानों में आदत है कि काम इनके और वो भी गैर करें। सदाकत इस्लाम साबित करनी हो तो गैरों के पास जाओ, अपने झुठलाने पर ही लगे रहें। ऐसे ऐसे जहराना तसव्वुर बांधें कि जो मोमिन हो वो भी काफिर हो जाए। इसलिए अब इस दौर को बदलो, अब अहमदियत का दौर है, अब हमें तहकीकात खुद करके तो दुनिया के सामने वो हकायक पेश करने चाहिए जो कुरान और हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के जिंदा निशान हैं, मगर अभी दिखाई नहीं दे रहे। ये भी उनमें से एक है, मगर असल मजमून यही था कि मिसर इस्लाम फरमाते हैं दोनों चीज़ें इकट्ठी पैदा हुई हैं। शिफा जहर है तो तरयाक भी है, मिसाल मक्खी के परों से दी गई है, मगर सारी दुनिया में हर जहर का एक तरियाक आपको दिखाई देगा। कोई जहर ऐसा नहीं है जिसका कोई तरियाक ना हो। अब दरियाफ्त की बात है, जो दरियाफ्त कर ले वो कामयाब हो जाएगा, जो दरियाफ्त नहीं करेगा वो जहर से मगलूब हो जाएगा। तो फरमाते हैं एक मासी का इंसान के भी दो पर हैं, एक मासी का दूसरा खजालत तौबा परेशानी का। हो सकता है पेशेमानी फरमाया हो और सुनने वाले ने परेशानी सुन लिया हो, मगर परेशानी भी इतलाक पा जाता है, ये मजमून भी इतलाक पा सकता है। सुनाते हैं इंसान के भी दो पर हैं, एक गुनाहों का और दूसरा शर्मिंदगी का, खजालत का। और खजालत हो तो तौबा पैदा होती है, और अगर परेशानी है लफ्ज तो फिर इसमें और एक और माना पैदा हो जाता है। ये तदरीज होगी कि पहले शर्मिंदगी होगी तो तौबा की तरफ तवज्जो होगी, तौबा जब की तरफ तवज्जो होगी तो उस वक्त परेशान हो गए, उस वक्त पता चल जाएगा कि शर्मिंदगी से बात नहीं बनने वाली, ये तो बहुत गहरा नुकसान पहुंच गया है। जब टटोल के देखा तो फिर पता चला कि कितना गहरा नुकसान था जिसमें मैं मुबतला हो चुका हूं। तो जो नुकसान पहुंच जाए उस पर परेशानी हुआ करती है, और परेशानी में उसको दूर करने का पहलू भी शामिल होता है। तो परेशानी लग जाती है कि अब मैं किस तरह से निजात पाऊं। ये एक कायदा की बात है, जैसे एक शख्स जब गुलाम को सख्त मारता है तो फिर उसके बाद पछताता है, वो कि दोनों पर इकट्ठे हरकत करते हैं, एक तरफ गुना का, दूसरी तरफ नदामत खजालत और फिर तौबा का। जहर के साथ तर्याक है। अब सवाल यह है कि जहर क्यों बनाया गया? ये चूंकि एक बारीक फलसफा है गुनाह का, जिसको ज्यादा तफसील से आपके सामने रखना होगा, इसलिए मैं यहीं बात खत्म करता हूं। आइंदा खुतबे में इस सवाल का जवाब छेड़ूंगा पहले, कि अगर गुनाह के साथ तर्याक रखा गया है तो गुनाह बनाया ही क्यों गया, और अगर बनाया गया है तो हिकमत से खाली बात नहीं। वो क्या हिकमत है या और क्या हिकमतें हैं, इंशाल्लाह इन बातों की तरफ आइंदा खुतबे में तवज्जो दूंगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر